ओम शांति। भक्ति के आज लास्ट दिन, हम सब भाग्यशाली हैं कि बाबा का कोहिनूर हीरा आदरणीय सुदेश दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी एक हाथ की ताली बजाकर आदरणीय दीदी जी आपका हम स्वागत करते हैं। स्वागत है दीदी जी। आदरणीय सुदेश दीदी जी अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं। आप ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर हैं। ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के यूरोपियन सेवाओं के भी आप डायरेक्टर हैं। विशेष जर्मनी में सेमिनर हॉर्स मॉरिंगटन के जो रिट्रीट सेंटर है उसके भी आप डायरेक्टर हैं। दीदी जी को 3 वर्ष की आयु से ही भक्ति के प्रति लगाव हुआ। आप अपनी दादी जी के साथ में मंदिर जाना सीखा, वहीं पे गीता कीर्तन आदि सुनते रहे और सीखा भी। बहुत बचपन से ही आपको बहुत सारी आरतियां भी याद हो गई थी, लगभग 9 आरतियां। आपने बहुत धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया। भक्ति के साथ समाज सेवा का भी आपको बहुत शौक था, तो बाबा ने भी अपने हीरे को परखकर अपनी सेवाओं में चुन लिया। मासी की भी प्रेरणा रही और आपकी फ्रेंड ने आपको बाबा के ज्ञान में ले जाने के निमित्त बना। आप 57 में ज्ञान में आए और दिल्ली के आसपास के सेंटर खोलने के निमित्त बने। 58 में आबू आए। 68 में बाबा ने आपको ट्रेनिंग सेंटर दिखाते हुए कहा था कि यहाँ पे आपको कुमारियों की ट्रेनिंग करानी है। बाबा ने आपको फायर ब्रिगेड का भी टाइटल दिया था। आपके समर्पण की भी बहुत सुंदर कहानियां हैं। आपके पिताजी ने जब मम्मा का प्रोग्राम था मूलचंद हॉस्पिटल में, तब आपके लिए ये कहकर समर्पित किया कि हमारे बगीचे का ये चैतन्य फूल आप जगदम्बा को समर्पित हैं और ये फूल खुशबू फैलाएगा। और उस बात को चरितार्थ करते हुए आपने भारत की सेवाओं के साथ साथ विदेश की सेवाएं भी खूब की हैं। जयपुर दिल्ली के पहला म्यूजियम खोलने के निमित्त बने, परंतु 1974 में बाबा की सेवाओं के लिए आप विदेश में गए और 100 से भी अधिक देशों का भ्रमण किया आपने बाबा की सेवाओं के लिए। यूके, लंदन, फिर जर्मनी सीखी आपने दादी जानकी जी की प्रेरणा से, फिर वहां की सेवाएं भी संभाली। विदेश की संस्कृति को समझ के सेवा करना ये आपकी अनूठी शक्ति है। आप सबके दिल की भावनाओं को समझने में माहिर हैं। आप बहुत ही गहराई से बाबा की बातों को समझाते हैं। तेहरान, बर्लिन वगैरह में जो धर्म सम्मेलन होते हैं उसमें मुख्य रूप से आपको आमंत्रित किया जाता है बाबा की सेवाओं के लिए। 67 वर्षों से आपने जो अथाह सेवा की वो शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, पर इतना जरूर है कि आप हैं कहानियां मम्मा बाबा की, आप हैं निशानियां दादियों की। आज यज्ञ जो कुछ भी है दीदी आपकी है मेहरबानियों की। इतना ही कहूंगी दीदी लास्ट। 67 वर्षों की तपस्या, सेवा और त्याग की मिसाल है आप। दीदी आपका जीवन है ईश्वरीय प्रेम का कमाल। हर कदम पर ज्ञान की ज्योति जलाती रही, अनगिनत आत्माओं को मंजिल तक पहुंचाती रही। आपकी वाणी से मिलता है आत्मबल का प्रकाश, आपके संस्कारों से खिल उठता है हर उदास मन का आकाश। आपका जीवन सिखाता है सेवा ही सबसे बड़ा सम्मान, निस्वार्थ कर्म ही है सच्चे योगी की पहचान। ईश्वर करे आपकी प्रेरणा यूं ही जग को राह दिखाती रहे, हर आत्मा आपके स्नेह और आशीर्वाद से यूं ही मुस्कुराती रहे, यूं ही मुस्कुराती रहे। तो दीदी जी से सुनेंगे सच्चे दिल पर साहेब राजी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम ओम आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम। एंड अभी भी कहेंगे सच्चिदानंद की याद में गुड मॉर्निंग। सतयुग के आदि रत्नों को देख देख के दिल खुश हो रहा है, तो इसीलिए कितने दिल से कहे वेलकम वेलकम वेलकम। मेरे को एक सेकंड थोड़ा ही अभी पता चला कि ये भाई बहन इस बेहद की सृष्टि में भगवान ने इनको ढूंढ के लाया है स्पेशल। तो मन में संकल्प आया, यानी ये मेरे को यहाँ तक चुनाए कि ये स्पेशल स्थान से सुनाई भी दिया, समझ भी आई। तो संगम युग पर इस बेहद की मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। सच्ची चीज क्या है उसकी परख सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम को होती है। और जीवन में अगर कुछ अपने जीवन को चलाने के लिए किसी को कुछ चाहिए, तो संगम युग पर जैसे भगवान ने ये स्थान खोला अपने बच्चों के लिए, तो बाबा ने पुरुषोत्तम बनाने के लिए आत्मा के सत्य स्वरूप का परिचय दिया। परंतु वो मैं जो सीन सामने आया पहले वो बताती हूँ। तो देखो, मार्केट में सबसे पहले कौन सी चीज खुलती है आपको पता है? मंडी खुलती है। सबसे पहले अमृत वेले उठते भोजन खाना है जिसको, या जिसको किसी को खाना देना है, तो सब्जी मंडी बड़ी जल्दी खुलती है। तो ये सब रत्नों की मंडी। ये सब रत्नों की मंडी, रत्नाकर ने मंडी से ढूंढ के अपने मधुबन घर में बुला लिया। इसलिए वे बट्टी करने के लिए, पक्का करने के लिए, समझा, सच्चे हीनों को परख कर करे, गोल्डन एजेड ही गहनों को पॉलिश करने के लिए, आत्मा को अपने सच्चे स्वरूप में टिकाने के लिए ये बाबा ने मंडी से इनको यहाँ लाया है। समझा, ये था योग में पहला आपका एक संदेश कान में सुनते, ये मंडी से आए। समझा, परंतु बैठे कहाँ है? बाबा के दिल के अंदर बैठे। ऐसे सच के सच्चे बाप के दिल पर, सच राज सच्चे बच्चों के दिल पर साब राजी है, क्योंकि सहज नहीं है मधुबन में भट्टी करने का चांस मिले, ये साधारण बात नहीं है। भट्टियां तो बहुत होती हैं, नीचे तो भट्टियों का लगातार वन आफ्टर अदर, परंतु यहां से निमंत्रण जाता है। आप लोगों को विशेष एप्लीकेशन देने की तो बात ही नहीं, परंतु निमंत्रण मिलता है, आओ भगवान के घर, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ, बाबा बुलाते हैं मधुबन वाला। बाबा अपने बच्चों को बाएं पसार करके खड़े, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ, ऐसे देखा ना। तो यहाँ तो बाबा आते ही बच्चों का वेलकम करते। आपने सच्चे दिल से ये मन में लाया मधुबन में भट्टी करने जाए। फिर तो पहले तो पता नहीं था, मधुबन तो मधुबन है, शांतिवान भी मधुबन है, बाबा मधुबन में आते हैं, ज्ञान सरोवर भी मधुबन है, बाबा के हर स्थान हर कमरा मधुबन है, क्योंकि मधुबन वाले बाबा की मुरली बजती है। मधुबन बाबा और बाबा की मुरली, और जहां बाबा की मुरली है वहां बाबा के बच्चे, जहां बाबा के बच्चे वहां बाबा। ये बाबा का वायदा है कि जहां भी मेरे बच्चों का संगठन होगा मैं पहुंच जाऊंगा। बच्चों को तो आने में प्लेन में ट्रेन में टाइम लगता है, दिन लग जाता है रात लग जाती है, मेरे को तो संकल्प किया और पहुंच गया, सेकंड भी नहीं लगता। हमको तो सेकंड की प्रैक्टिस कराई कि सेकंड में अपने को आत्मा निश्चय करो, तो हमने तो पहले संकल्प किया कि मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो ये सेकंड में टिकने से पहले तो सेकंड ऐसे चला गया। सचमुच अगर कहे मैं सेकंड का अभ्यास करने का, अपने बिंदु स्वरूप का, अपने सत्य स्वरूप का, मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप, प्रकुटी भी चमकता एक चेतन सितारा। सच्चिदानंद की संतान, सत्य स्वरूप आत्मा, सच्चिदानंद की संतान, सत्य स्वरूप शक्तिशाली आत्मा, मैं आत्मा सच खंड निवासी हूं। जहां सच्ची शांति, संपूर्ण पवित्रता। सत्यम शिवम सुंदरम का निवास है। मुझे आत्मा का वो असली धाम है, सच्चा घर, शांति धाम है। शक्ति, सत में शक्ति है, सत कभी बदलता नहीं, सत को सिद्ध नहीं करना पड़ता, पर सत्य प्रसिद्ध होता है। सच्ची चीज है उसको प्रूफ नहीं देना पड़ता कि मैं सच्चा हूं। तो हम आत्माएं सत्य युग के सचखंड के निवासी आत्माएं हैं, बाबा के सच्चे बच्चे सतयुग में उतरे हैं। तो सदा ये याद रहे कि मैं आत्मा सच्चे साहब के साथ सचखंड के निवासी इस सृष्टि लोक पर जब आई तो ये मेरा लास्ट जन्म जूठ खंड में है, पर फर्स्ट जन्म कहा हुआ? फर्स्ट जन्म सतयुग में हुआ। ये सारे सृष्टि चक्कर का निश्चय सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक, सतयुग की कहानी, सृष्टि चक्र की कहानी, ड्रामा का राज उनकी बुद्धि में बैठेगा जो आत्माएं अपने सत्य स्वरूप को सदा याद रखे। भले डब्बी प्लास्टिक की है या चमड़े की है, कागज की है, कमजोर है, जल्दी फटने वाली है, या कपड़े की है, पर मैं इसमें सच्चा हीरा बैठा हूं। और हीरे में ही सोना शोभता है। सोना हीरे को खींचता है, सोने की अंगूठी होगी ना, कहेंगे खीरा लगा देते। कुंडल सोने के होंगे, कहेंगे चलो खीरा भी इसमें लग जाए। सोना वैसे हीरा ऊंची चीज है, पर सोना हीरे को खींचता है। और बाबा हमको सच्चा सोना बनाने आता है, तो बाबा जो हीरे तुल्य जिसकी जयंती है, भारत में ही जयंती होती है और शिव की जयंती हीरे तुले है, तो हीरे तुले हीरा बनाने वाला बाबा, हम सोल गोल्डन एज सोना को बनने वाली आत्माओं के पास खींच के आते हैं। समझा इस राज को, क्या जितनी जितनी आत्मा सच है अपने सत्य स्वरूप में टिकती है, बाबा को याद किया बाबा पट से आ जाएगा। संगमपुर यही बाबा की प्रैक्टिकल प्रॉमिस है, बच्चे सेकंड से सच्चे दिल से मेरे को याद करो, कैसी भी तुम्हारी परिस्थिति है मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। कोई भी समस्या है उसका समाधान टच हो जाएगा। मैं करण करावनहार तुम्हारे कार्य को अगर सच्चाई से किया है, सफाई दिखाने के लिए नहीं, सच्चे दिल से किया है, तो सच पर सब राजी है। और राजी का अर्थ ही है कि उसमें सफलता ही सफलता है, उसका राज यही है। राजयोगी को सिर्फ एक ये याद रहे, मैं जीरो, मैं हीरो हूं और मैं जीरो हूं, तो अहम भाव दे अभिमान नहीं रहेगा। आत्मिक स्थिति अपने सच्चे स्वरूप में रहेगा। ये जो मेरे जिस्म जिस्म के डिफरेंट डिफरेंट रूप है, ये तो टेम्पररी है। मेरा अनादि और अविनाशी स्वरूप चैतन्य सदा ही अविनाशी आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम की संतान अपने लक्ष्य को सदा याद रखेगी। अब वापस मुझे सच खंड में जाना है और सतयुग के लिए मुझे अपनी स्टेज को सतो प्रधान बनाना है। मैं जब आई थी तो सतो प्रधान आई थी, आत्मा जब परम धाम से उतरी तो सतो प्रधान स्टेज से उतरी। सत्यता में भी प्रधानता, हाईएस्ट डिग्री, और उसमें जो महिमा सतयुग के फर्स्ट प्रिंस की है। आज बाबा ने कहा कि 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक। तो ये महिमा सतयुग की आत्माओं की है। तो अपने आप को देखे कि मैं सतयुग से चला सतो प्रधान था, तो सच्चा बाबा कहते हैं कि सतयुग के युग में तुम आत्माएं अपने सतो प्रधान स्टेज में ऐसी रहती हो, वहां झूठ का तो नाम निशानी नहीं, नेचुरल स्टेज शुद्ध शांत पवित्र प्रेम स्वरूप और सुख स्वरूप है। शुद्ध शांत प्रेम स्वरूप और सुख स्वरूप आत्मा है, इसलिए सुख धाम है। और सतयुग में कोई आत्मा न हमको किसी प्रकार का भय है, न किसी के साथ वैर है, तो हम निराकार बाप की संतान, सप्तम सिमम की संतान, निर्भय निर्वैर। इस समय वो अपने संस्कार भरते सत्यता के, अपने साथ भी सत्यता और मित्रता का अभ्यास अभी करते। आत्मा अपना मित्र है, आत्मा अपना शत्रु है। सच्चाई में मित्रता है, सच्ची दोस्ती है, तो अपने साथ भी सच्चाई, सच्ची मित्रता, सच्चा सने, तो हमारा कर्म जो भी होगा वो हृदय की सच्चाई से होगा, यानी उसमें हृदय की भावना शुद्ध होगी। बहुत प्रेम से करेंगे, निश्चय से करेंगे, समझ से करेंगे। कर्म करते भी सच्चे जोगी जीवन की निशानी पवित्रता है, सच्चे योगी की निशानी व्यर्थ चिंतन नहीं, पर चिंतन नहीं, तो दृष्टि मनोवृत्ति सतो प्रधान होगी। ये नहीं कहना पड़ेगा मैं सच कहता हूं, मैं सच कहती हूं, मैं सच बताती हूं, सच बताती हूं, इसका मतलब कुछ शक है तो कहती हूं सच बताती हूं। सच तो सत्य है, जब थोड़ा कुछ दूसरी चीज मिल जाती है, इधर उधर की बात सुनी सुनाई वातावरण में फैल जाती है, तब कहते हैं आपने सुना है जो भी, पर मैं सच्ची बात बताती हूँ। मिक्सचर हो गया ना कुछ, तब ये कहना पड़ा। जैसे जब असली घी है तो असली घी है, बस बस घी घी लेके आओ भाई, असली घी है तो घी बोलेंगे। घर में घर गाय भैंस है, असली घी 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 बोलेंगे। बाजार में जाएंगे, लिखा होगा असली घी, डालडा मिक्स हो गए है वह, तो कहेंगे असली घी। तो घी तो घी है, घर में नहीं कहेंगे, बस कहेंगे घी लेके। तो आत्मा में कोई मिक्सचर नहीं था, या आत्मा का जो असली शक्ति थी, भाई घी क्या है, इसलिए कि शक्तिशाली है। ऐसे मक्खन भी अच्छा है, ताजा है, फ्रेश है, परंतु मक्खन फिर भी कोई मच्छर आ जाएगा उसमें, शायद बैठ जाएगा। थोड़ा थोड़ी लस्सी रह भी गई, थोड़ी उसमें छाछ रह भी गई, तो बदबू हो जाएगी, ज्यादा दिन नहीं चल सकेगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से अग्नि पर धीमे धीमे आंच पर रखना पड़ेगा। मक्खन से घी बनाने के लिए मक्खन तो मिल गया, अभी मक्खन चोर की बात बताते हैं, तो मक्खन चोर कुछ और नहीं, यानी सबके शुभ चिंतन, शुभ मनन, शुभ कर्म की अच्छाई को हमने चुपचाप अपने अंदर धारण कर लिया। सबके गुण को, ईर्ष्या नहीं रखी किसी के गुण के, ईर्ष्या द्वेष ये झूठ का झूठ कंड की चीज है। ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध ये झूठ खंड के भंडारे में मिलता है, झूठ खंड की दुकान पर मिलता है। पर शुद्ध प्रेम, प्रेम भावना तो कोई जहां प्रेम हो, कोई बढ़ रहा हो, ईर्ष्या होगी। सच्चा संबंध होगा, ईर्ष्या होगी। एक बाप किसी स्कूल में नौकरी करता, चपरासी है, बेटा ने जन्म लिया, मेहनती है, चरित्र अच्छा है, अपने पर ध्यान रखता है, संग दोष से बच गया, पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया, माँ बाप की सेवा करके दुआएं ली, परमात्मा के साथ भी संबंध जोड़ के शक्ति भरी, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। समाज सेवा की दुआएं ली, अब उनकी माँ को जब बाप को ईर्ष्या होगी, मैं तो चपरासी और ये तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, इसको तो सभी कहा बिठाते। तो जहां सच्चा प्रेम है और सच्चाई से पुरुषार्थ है, सच्ची याद है, तो वहां पर सच पर सब राजी है। और वो सांप नहीं खाली तो विश्व का मालिक बना देता है, राजिया तो मिनिस्टर नहीं बनाता, देवता बनाता है, विश्व का मालिक बना देता है। तो मैं कह रही थी मक्खन चोर बनना है, सर्वगुण संपन्न का मतलब सबने जो बाकी ने मक्खन बना लिया है, अच्छी अच्छी बातें चरण कर ली है, उसमें से हम अच्छी चीज को जो उन्होंने धारण कर लिया है तो उसे ईर्ष्या न रखे। उसके लिए ये अब तो बाहर शो कर रहा है अपना, अच्छा शो कर रहा है तो अंदर हमको फिर किस सच्चाई क्या है वो मैं अंदर धारण करूं, शो को नहीं देखूंगा। तो सच्चाई से सच्चाई पकड़ेंगे, ईर्ष्या से सच्चाई को भी झूठा सिद्ध करेंगे। तो इसीलिए जब हम आत्मा है तो पहली बात सच्चे आत्मा सबसे जो उसके अंदर गुण है, अपने अंदर जो गुण है उसे भी सद्भावना से और सच्चाई से सेवा करेंगी, और दूसरों से भी उनकी अच्छाई सच्चाई को देख करके अपने अंदर धारण करेंगी। इसी को कहते हैं गोप और गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ मक्खन चुराया। अभी कहा नंद बाबा के घर में इतने गऊएं, दूध नहीं मिलता होगा, मक्खन नहीं मिलता होगा क्या? चुराने की जरूरत तो तब पड़ती है जबकि कोई छिपावे, उनके लिए तो गाय न, श्री कृष्ण के लिए उनके नंद बाबा ने 9,00,000 गौए दान की। ब्राह्मणों के हरे एक किसी के घर में अगर 9 बच्चे हैं तो 9 गौए दी, ऐसी कहानी है। मतलब अब उनका घर तो छोटा था, जितना था गौए कोने कोने में बांध सके, आखिर कोई जगह नहीं रही तो रसोई में भी गऊ बांध दी। मतलब इतनी नंद बाबा थे। अब जिसके बाप ने इतनी गौएं दी, जो किसी के पास जगह नहीं है तो भी उसको कहा नहीं तुम अपना हिस्सा लेके जाओ, तो चोरी कैसे करे। पर कोई अच्छा काम हृदय की सच्चाई से, किसी की अच्छाई हमने चुपचाप सब कहा ग्रहण कर ली, और उसको अपने अंदर अभ्यास किया। मानो आपने देखा कि इस आत्मा ने पुरुषार्थ करके अपने इस डिग्री को प्राप्त किया, तो अंदर लक्ष्य रखा भाई मुझे भी ऐसा गुणवान बन के इस पोजीशन पर पहुंचना है। तो चुपचाप पढ़ाई करते करते, मेहनत करते भी पढ़ाई करते डिग्री ले ली, तो कहेंगे अरे चोरी चोरी तुमने ये डिग्री ले ली, मेहनत करके मकान बना लिया, का चोरी चोरी तुमने इतना सुंदर मकान बना दिया, अब चोरी करके नहीं आया किसी भी, परंतु जो दिखावा नहीं है पर अंदर का सच्चा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मुझ आत्मा अर्थ मैंने गंभीरता से, धैर्यता से, प्रेम से, गंभीरता धैर्यता प्रेम निश्चय लगन और निरंतर, गंभीरता धैर्यता प्रेम निश्चय लगन और निरंतर, ये नहीं कभी करूं कभी नहीं करूं, कभी करूं कभी नहीं, वो सच्चाई से अभ्यास किया है उसका फल जरूर निकलेगा। तो परमात्मा भी कहते हैं बच्चे मुझे निरंतर याद करो, अंतर नहीं होवे, निरंतर याद करो, सदा शिव सदा मुझे याद रखो, चलते फिरते उठते बैठते जिसकी याद होएगी तो याद से शक्ति जरूर मिलेगी। उनके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। हाँ तो मैं बता रही थी कि चलो अपने पास नहीं है तो दूसरे ने जो गुण धारण किया है उनके गुण व्यवहार से ईर्ष्या ना होवे, परंतु गुण ग्रहण करना, सर्व गुण संपन्न बनने का मतलब सबके गुणों को ग्रहण करना। सर्व गुण का मतलब ये नहीं है कि 36 गुण है कि 56 गुण है, ये नहीं है, सबसे गुण ग्रहण करना है। जानवर से भी बाबा ने गुण ग्रहण किया, सांप से भी गुण ग्रहण किया, तो कछुए से भी गुण ग्रहण किया, तो भ्रमरी से भी गुण ग्रहण किया, मिसाल यही थी ना। अभी सांप तो जहरीला है ना, पर क्या गुण ग्रहण किया कि सांप कैचुली को छोड़ देते है, देखा उसको गुण में परिवर्तन कर दिया। यहाँ घूमने गए थे, बरसात का दिन था, बरसात के बाद बाबा के साथ घूमने गए, तो सड़क पर यही नकी लेक के से आते हैं, तो सड़क पर उस सांप की कैचुली पड़ी थी। कहा देखो बच्चे इस सांप में भी इतनी अक्कल है कि अपनी ड्राई स्किन छोड़ के चला गया, इसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो तुमको भी ये पुराना शरीर है ये ध्यान रहे, शरीर का ध्यान रखो पर मोह नहीं रखो। पुराना हो गया, पुराने से बेहद का वैराग रखो, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखो। हम सन्यासी नहीं हैं, पर बेहद के वैरागी हैं। हम घर का त्याग नहीं करते पर बुराइयों का के त्याग करते, इसलिए त्यागी हैं। सच्ची तपस्या प्रभु की लगन में मगन रहते हैं, इसलिए हम तपस्वी हैं। लगन की अगन जल रही है गुप्त पुरुषार्थ को, तो सच्चे तपस्वी हैं। तो सच्चाई का मतलब सिर्फ सच्चा कहने की बात नहीं है, वो सच्चाई जीवन से सिद्ध होती है। अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो याद तो आत्मा को पक्का बनाएगी ना। तो वो जो मक्खन गुण ग्रहण किया या बाबा की याद की मुरली का गुण ग्रहण किया, अंदर ही अंदर मंथन किया, मंथन दूध को अच्छी तरह से प्यार से वॉर्म किया, फिर उससे तो मक्खन नहीं निकलेगा ना, दूध से बनता तो दूध से ही है मक्खन, असली तो दूध चाहिए, पर दूध से मक्खन कब निकलेगा, जब 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 जम गया, दही जम गई। दही कैसे जमेगी, दही कैसे जमेगी, जब कल वाला या परसों वाला जाग लगाएंगे, अश्वखत्ता बोलेंगे, जो भी कुछ बोलते हैं, कल वाली दही परसों वाली दही उसमें मिक्स करेंगे, उसको कांस्टेंट एक ही टेम्परेचर पर रखेंगे। भाई अच्छी तरह से सर्दी है तो अच्छी तरह से लपेट के रखेंगे, या तो भिन्न भिन्न तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखेंगे। तो सच्चाई को भी कांस्टेंट गंभीरता से, मैं शुद्ध आत्मा श्याम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, तो बाबा के लिए वो प्यार भी रहेगा, अंदर का पुरुषार्थ भी ऐसा ही रहेगा, और गंभीर है तो गुणग्राही तो होंगे ही सही, व्यर्थ बोलेंगे नहीं, व्यर्थ चिंतन नहीं है, कम बोलेंगे, जरूरत का धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, जरूरत होगी तब भी बोलेंगे, नहीं तो वो जो गंभीरता नहीं जम रही है ना, वो हिल जाएगी। कोई बातचीत चल रही है तो मेरा मतलब भी नहीं है, मैं भी समझदार हूँ, मैं आया बीच में दो शब्द बोलती है और मेरा तो मतलब ही नहीं उसमें, परंतु क्या है, थोड़ी चतुराई होशियारी दिखाने के लिए, तुम गंभीर धीर तुम शांत, तो जरूरत हो तो बोलो, जरूरत नहीं है तो नहीं बोलो। लाठी गुलजार जी के अंदर ये जरूरत था, ये तो पुराना शब्द है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, परंतु जरूरत हो तो बोलो। तो दादी गुलजार की बात कितनी भी मीटिंग्स होती थी और दादी से पूछते थे आपकी ओपिनियन क्या है, तो दादी दो शब्दों में अपनी ओपिनियन बताती थी। ऐसे ही कोई अगर करेक्शन देनी है तो उनसे पूछते थे तो राय देती थी सने से। तो मेरा कहने का मतलब कि हम आत्मा के अंदर वो सच्चा घी शक्ति कैसे आएगी, जब हमारे अंदर वो जो बाबा का सच्चा ज्ञान है, बाबा ने जो सच ज्ञान दिया है वो हमारे हृदय में अथवा हमारी बुद्धि के मटकी में जम जाए, गंभीरता के गुण से, प्रेम की लगन की अगन से वो जम गया हृदय में, जच गया, फिर उसके अंदर ऑटोमेटिकली विचार चलेगा, उसके अंदर फिर उसका खुशी आएगी, शक्ति आएगी, उमंग उत्साह आएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगी, इकट्ठा हो गया, सार मतलब बुद्धि में आ गया, विस्तार से सार में आ गया। फिर अब घी बनाना है तो धीमी धीमी आंच पर रखें, वो जो लस्सी है छाछ है वो निकल गई, महीना दो महीना भी चले बदबू नहीं होगी, खुशबू आएगी, तो अंदर की खुशी खुशी देती है, शक्ति खुशी देती है। और बाबा ने कहा चलो सारा खुद नहीं खाओ औरों को भी खिलाओ, तो टोली बना के खिला दो, तो कोई ना कोई बात में बेचारे बहुत लोग जो है वो चाहिए, उनको इच्छा होती है थोड़ा ज्ञान मिले, शांति मिले, खुशी मिले, शक्ति मिले, उनको बांट दो, उनको सच बात बाबा का परिचय दे दो, आपको खुशी हो जाए, खुशी मिलेगी, उनको बाबा की शक्ति मिलेगी। तो परमपिता परमात्मा ने जो हमको सच बताया है, सच को सिद्ध नहीं करना पड़ता। समानो सूरज चढ़ा है, सूरज सिद्ध नहीं करता कि मैं चढ़ा हूं, रोशनी हो गई, सूरज चढ़ गए, गर्मी पता, गर्मी महसूस हो रही है, सूरज की शक्ति काम कर रही है। तो जैसे प्रकृति सिद्ध नहीं करती, जिद्द नहीं करती, तो सत्य को सिद्ध भी नहीं करना पड़ता, जिद्द से भी नहीं करना पड़ता, वो आप ही प्रसिद्ध हो जाता है। तो हम अपने जीवन में जितने जितने जो आत्मा के सच्चे गुण हैं, परमात्मा का सत्य ज्ञान, आत्मा का सत्य धर्म, हमारा सत्य धर्म शांति और पवित्रता है, तो हम स्वधर्म में टिके हुए हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है, वो स्वधर्म की शक्ति हमको, पवित्रता की शक्ति हमको संसार में रहते हुए भी न्यारी रखेगी। डर के मारे पवित्र नहीं रह रहे हैं, हाँ डर ये कि और नया कर्म पाप कर्म न करें। पिछले का बाबा ने वायदा किया है कि जो तुम्हारे विकर्म किए हुए हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुम बच्चों को विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे सच्चे दिल पर इसे याद करेंगे, साब राजी है, तुम्हारी भूल भूल को माफ कर देगा। पर तुम अहंकार आ गया तेरे को, मैंने तो सब कुछ किया, इसने तो कुछ नहीं किया, कंपैरिजन किया, उसमें झूठ अहम मिक्स हो गया, सोल कॉन्शियस सच है, बॉडी कॉन्शियस झूठ है, झूठी काया है तो झूठी माया जरूर अंदर आएगी। तो काया झूठी का मतलब इस काया का अभिमान, प्रकृति तो जरूरी है शरीर के लिए, आत्मा के लिए, परंतु उसका अभिमान झूठा है, ये समझने की जरूरत है। शरीर झूठी काया झूठी माया, यानी उसको सच समझ लिया कि मैं शरीर हूं, तो देह का अभिमान आ गया। और सच्चाई क्या है, मैं देह को धारण करने वाली आत्मा हूं। तो सत्य ज्ञान, हमारा पिता सत्य पिता है, सत्य शिक्षक है, सत्य गुरु है, सच्चिदानंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्ययुग स्थापन करता है, सतो प्रधान बनाता है तमो प्रधान से, हर चीज में सच सच आता है। सृष्टि का चक्कर बेशक हम संगम पर खड़े हैं, पर सत्ययुग से शुरू होता है, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम है। तो हम परमात्मा की महिमा सत्यम शिवम सुंदरम है। तो रिश्ते में सच्चा सत्य क्या है? आत्मा का पिता परमात्मा है। आत्मा के अंदर आत्मा और शरीर के संबंध में सच्चाई क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो मुझे कितना समय है मैं अपने सत्य स्वरूप में टिकी हुई हूं? सारा दिन में सोचे कितने परसेंटेज, जैसे आज बाबा ने कहा कि परमात्मा पिता के रिश्ते में, पिता और बच्चे के रिश्ते में परसेंटेज नहीं होती, बच्चा बच्चा है, है? तो ये परसेंटेज पुरुषार्थ में परसेंटेज 25% रहा या 100% रहा, तो सोल कॉन्शियस सच्चाई संपूर्ण स्टेज जिसमें से मिक्सचर सारा खत्म हो गया, विस्तार निकल गया, सार रह गया और वो शक्ति बन गया। सर्व शक्तिवान परमात्मा इसलिए है कि निराकारी है। तो मैं आत्मा भी सच्चिदानंद की संतान, आत्मा सच है। शरीर का भान, देह का भान ये झूठ है, क्योंकि उससे अभिमान आएगा। हाँ, पर बाबा कहता है आत्माभिमानी बनो। अभी आत्माभिमानी बने तो वो भी तो अभिमान है ना, परंतु वो अभिमान का अर्थ समझना है कि हे बच्चे, बहुत वक्त तक तुमने अपने को देह माना है, देह के संबंधियों को मेरा मेरा कहा, देह को मेरा कहा, देह की वस्तुओं को मेरा कह करके मोह में फंस गए, लोभ में फंस गए। देह भान में जो कमाई की, जो पढ़ाई की, जो ऊंचाई तक पहुंचे, अहम भाव आ गया। दूसरे की सच्चाई पर वहम आने लगा, रहम खत्म हो गया, तो वो सच्चाई नहीं रही ना। तो तुम आत्मा शरीर से न्यारी हो और प्रभु की बहुत प्यारी हो, तो प्रेम स्वरूप आत्मा भी हूं, शांत स्वरूप हूं तो प्रेम स्वरूप भी हूं। तो अभी मान लो पहले कि मैं देह में रहने वाली आत्मा हूं। अब अभिमान तो शब्द आया, पर हमारा फोर्स देह पर ज्यादा रहा तो वो देह अभिमान हो गया। अभिमान तो आत्मा को भी है, तो मान लिया तो अभिमान आया है ना। शब्द थोड़ी, शब्द की पहचान। मैंने मान लिया मैं प्रोफेसर हूं इसलिए मैं करेक्ट कर सकता हूँ, मैंने मान लिया और समझ लिया और जान लिया मैं मिनिस्टर हूं इसलिए साइन कर सकता हूँ, मेरी अथॉरिटी है। तो मैंने सचमुच अपने आप को आत्मा माना, बहुत समय तक भूल गए थे और शरीर मानने लगे थे। अब भगवान कहता है बच्चे, अभी समय है संगम युग का, तू दे नहीं, तू दे ही अभिमानी है, अभी मान जाके दे। परंतु हमने जो जोर दिया मानने का वो देह पर दिया, देह के संबंध पर दिया, देह की प्राप्ति पर दिया, वो अभिमान बन गया। और ये स्वामान, स्वयं को आत्मा मान, इसको आत्माभिमानी कहते हैं या देह अभिमानी कहते हैं। अशरीरी हैं, अपने असली सच को पहचान लिया तो शरीर का भान क्या काम करेगा। मैं अव्यक्त हूं, व्यक्त व्यक्तियों वाला मेरा विचार व्यवहार अभी नहीं रहा, तो मेरा बोल, मेरी दृष्टि, मेरा विचार, मेरा व्यवहार बदल जाएगा ना। रिश्ता मेरा बदल गया शरीर के साथ, फरिश्ता बन गया। तो कला आ गई सर्व गुण संपन्न से अपने आप के अंदर गुण ग्रहण करके यूज करने की आर्ट आ गई। तो हमारी जो चंद्रमा की जैसे रोशनी बढ़ती जाती है, वो कला बढ़ती चली गई। हमारी जो वैल्यू थी 16 आने, सच है पुराने जमाने में कहते थे 16 आने, तो 16 कला का मतलब 16 आने 100% संपूर्ण चंद्रमा सत्व प्रधान, धीरे धीरे सत्व प्रधान बन गए। पर सच्चाई को प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके, तो सच क्या, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, अशरीरी हूं, निराकारी हूं, असली में वास्तव में निर्विकारी रहती, फिर से निराकारी निर्विकारी बनना, अहंकार फिर झूठ मिक्स हो गया, तो सच्चे घी में डालडा मिल गया, तेल मिल गया, सच्चा नहीं रहा। तो ध्यान किस बात का देना, सच यह है कि मैं शरीर से न्यारी आत्मा, सत्यम शिवम से परमात्मा की संतान हूं, सच खंड की वासी हूं और सतयुग की अधिकारी हूं। सत धर्म स्थापन करने के लिए भगवान के मददगार हूं। तो ये अपने सत्य के साथ कितना संबंध है, सत्व प्रधान आत्मा हूं, मेरी स्टेज फिर सत्व प्रधान पहुंचे। तो अटेंशन सत्य पर देंगे तो झूठ से निकल जाएगा, पर हमने अटेंशन दिया झूठ पर। तो मैं आज सवेरे कभी कभी सुनाती हूँ, शायद यहां भी पीछे किसी क्लास में सुनाया है, भाई मानो आपने लिखा, चोर भागा रोको मत जाने दो, चोर भागा रोको मत जाने दो। अच्छा, अभी आपने जोर दिया, चोर भागा रोको, भाग रहा है चला जाएगा, रोक लो, चोर भागा रोको मत जाने दो, आपने पकड़ लिया चोर को, और चोर भागा रोको मत जाने दो, चोर चोरी करके ले गया। पकड़ लिया तो चोरी जो पकड़ी थी वो भी पकड़ी गई, जाने दिया तो आपका जो माल था वो भी चला गया, चोरी बदन। तो ये देह अभिमान को चेक करो, सच्चाई को चेक करो कि मैं सच्चे दिल से याद करता हूँ या ऐसे यहाँ मैं बैठी तो योग में हूँ पर मेरी बुद्धि भटक रही है इधर उधर, बैठी तो हूँ पर फूट से बैठी हूँ, और क्या कहेंगे, ये सोई पड़ी है अभी तक। अब ये सोई पड़ी है, मेरा योग तो ये सोई पड़ी है, ये सोया पड़ा है, मैं जागी हुई हूँ, मैं भी तो सोई हुई हूँ ना, तो मैं वो संकल्प से भी न्यारी हो जाऊं। साक्षी ठीक है, उनके शरीर को अगर चाहिए तो बड़े रेस्ट करे, मेरा चिंतन तो ना चले ना, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मेरा योग लगने के बजाय उस पर गुस्सा आ जाएगा, तो मेरे अंदर तो झूठ आ गया ना। अब भावना तो सच्ची थी, कामना तो अच्छी थी, परंतु इच्छा झूठी थी। मैं जो चाहूं सो होवे, ये नहीं होगा। इच्छा झूठी है, ईर्ष्या झूठी है, कंपैरिजन झूठा है, एक्सपेक्टेशन झूठे हैं, वो पूरे नहीं होते। तो झूठ की भी तो परख चाहिए ना। वो जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है तो फिर परख होती है। गर्मी आई तो अंधे को भी पता चला सूरज चढ़ गया, गर्मी आ गई है। एक बार की बात है कि किसी ने राजा ने राजा के पास बहुत हीरे थे, ऐसी जब रियल बात बताते हैं, उसको उस नशा था कि मेरे पास जितने हीरे हैं किसी और के पास नहीं है, मेरे पास सच्चे हीरे हैं। कोई कोई कहता था सच्चे कहाँ से होंगे, सच में झूठ तो मिला ही होता है। उसने कहा नहीं, मैं मेरे को जिसने भी आके प्रेजेंट किया ना, सच्चे प्रेजेंट किए। उसने कहा इसने कोई ने सोचा सच्चे प्रेजेंट किए तो जरूरी नहीं है जो सच्चे हों, कहा सच्चे हैं। उसने एक दिन फिर कहा कि अच्छा कोई सिद्ध करके बतावे इसमें कोई झूठा है तो मैं सच्चे हीरे सारे उसको दे दूंगा। उसने सभा लगाई अपने आंगन में, धूप चढ़ गई, लोग आने लगे, समझा जो हीरे के पारखी थे, तो परखा तो देखा तो लगते सच्चे हैं, परखने के भी देखा सच्चे हैं, चमक भी रहे हैं, कोई नहीं भी चमक रहे थे तो तमाशा देखने के लिए भी आए कि सच्चे कौन से। एक अंधा आ रहा था, उसने सुना कि हीरे परखेंगे तो जितने राजा ने हीरे दिए ना वो उसके हो जाएंगे, अगर कोई बताएगा कि ये झूठा कोई हीरा दे के लिए, मैं सच्चा हूं मुझे सब कोई सच्ची बताता, झूठ कोई नहीं बताता। उसको उसका अहम था, झूठा विश्वास था। ठीक है, एक अंधा पास कर रहा था, वो भी आ गया तो सब हंसने लगे, अरे ये अंधा ये क्या परखेगा हीरे को। वो टेबल बहुत बड़ा सजाया हुआ था, उसमें हीरे रखे हुए थे। अब वो एक एक हीरे को टच करता गया करता गया, एक हीरा पकड़ के हाथ में रख लिया, फिर और देखा तो कहा कि और सब सच्चे हैं पर ये हीरा झूठा है। कैसे झूठा है? उसने कहा टेस्टिंग पेपर उसे देखो। कहा पर तुमने कैसे देखा, तुम्हारे को तो आंख दृष्टि नहीं है। कहा कि सच्चा हीरा धूप में तपता नहीं है, ये शीशा तप गया है, ये धूप बदलने तपा दिया इसको, ये सच्चा नहीं है। सच्चा हीरा तो ठंडा को ठंडा होता है, झूठा चमकता है पर ये शीशा तो तप गया है। तो हमारी सच्चाई, हमारी स्वस्थिति में हम कितना रहते हैं, स्वस्थिति सच्ची है, परिस्थिति तो आई और गई, परिस्थिति झूठ से शुरू होती है, स्वस्थिति तो स्वस्थ सत्यम शिवम सुंदरम के याद से ही सत्युग आता है, सतो प्रधान बनते हैं और सबको सुख देते हैं। हम सुखदेव के बच्चे, सुखदेवी सुखदेव हैं, सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे, सत्य स्वरूप आत्मा है, सत्युग में जाने वाले हैं, सचखंड के वासी हैं, सबको सत्युग का रास्ता दिखाने वाले हैं। ओम शांति।